सूरत अनकबूत, थोड़ा सा सूरत का हम खुलासा देखेंगे। पहले नाम बड़ा अनयूजल है, मकड़े को कहते हैं स्पाइडर इंग्लिश में। अगर आप देखें, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने चींटी के नाम पे सूरत नमल रख दी और स्पाइडर के नाम पे सूरत है। बीच में आपने ज़ुबाब का ज़िक्र पढ़ा, शहद की मक्खी का ज़िक्र पढ़ा नहल की सूरत में। क्या पता चलता है इन सारी चीज़ों से कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की मखलूकात हैं और अल्लाह सुब्हानहु तआला जिसको जो चाहे काम दे दे, वो उस काम को कर रहा है। हमारे लिए इसमें बड़ी अहम बात यह है कि असल चीज़ इताअत है। जो बंदा इंसान होते हुए अल्लाह की इताअत ना करे, उससे वो मक्खी और मच्छर बेहतर है जो अल्लाह ने उसको काम दिया है, कम अज़ कम वो उस काम को कर तो रहा है। सूरत अनकबूत बहुत ही खूबसूरत सूरत है। इसका नाम सुनते ही मेरा दिल ऐसे दुखी हो जाता है जैसे कभी कुछ चीज़ों के साथ दुख की बातें मल्ली होती है ना, क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लम पर उस दौर में नाजिल हुई थी जब बहुत तकलीफ़ें थी, इतने सदमे थे, तकलीफ़ें। तो आप इस पूरी सूरत को अगर इसका मेन थीम देखें तो आजमाइश, अहले ईमान की आजमाइशें, दीन पे अमल करते हुए क्या होता है, और इसी तरह से हिजरत तक की नौबत आती है। इस पूरे सूरत का खुलासा यही है। अगर आयतों के हिसाब से देखें 69 आयतें हैं। आयत 1-7 में बताया गया कि आजमाइशें तो आकर ही रहेंगी। आयत 8-13 में बताया गया कि हकूमत और सरदारों के दबाव में ना हो, और तौहीद के मामले में वालदैन तक की बात नहीं माननी अगर वो शिर्क का हुक्म दें। आयत 14-40 आजमाइशों की तारीख है जिसमें मुख्तलिफ अंबिया कराम की कौमों का तस्करा और उस वक्त जो आजमाइशें आई थी उनका तस्करा है। आयत 41-43 में मकड़ी की तमसील है, यानी कैसे मकड़ा या मकड़ी अल्लाह ताला के हुक्म पे घर बनाती है, और उस पर इंशाल्लाह हम देखेंगे क्या होगा। पारा भी इसमें एंड होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पारा जो है वो 44-47 वाला हिस्सा जो है, हबशा के अहले किताब को दावत दी गई है और कुछ एतराज़ात हैं और कुछ तौहीद के दलाइल हैं। आयत 56-60 तक हिजरत का हुक्म और रिस्क का वादा है। आयत 61-65 में तौहीद के दलाइल भी हैं कि अल्लाह को अगर माबूद मानते हो तो हाकिम भी मानो। और आयत 66-68 हरम की नेमत के बावजूद कुरैश की नाशुक्री और उनका अंजाम। और आयत 69 में फिर बता दिया कि हिजरत होगी तो उसके बाद अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। और ये ज़िंदगी का असूल बना लीजिए कि आज आप अल्लाह के रास्ते में जहाँ भी आजमाए जाएंगे, कल अल्लाह ताला उसका आपको बेहतरीन बदला देगा। अगर आप माली तौर पे परेशान हो गए हैं, कोई बात नहीं, देखिएगा अल्लाह कुशादगी देगा, और बाकी चीज़ों में भी अल्लाह ताला का यही वादा है। आइए देखते हैं कि इस सूरत में आज हमारे लिए क्या है। देखा जाए तो आज के हालात भी कुछ इसी किस्म के हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि हम इसको पढ़ने के दौरान अपना मुहासबा भी करें। और आज के दौर में जो हमारा एक पेट जुमला बन चुका है कि मुसलमानों पे हालात बड़े तंग हैं, मुसलमानों के ऊपर बड़ी सख्ती हैं, तो ज़रा थोड़ा सा उसका तकाबुल भी कीजिएगा कि क्या वाकई आज सख्ती हैं। आज के दौर में तो आप देखिए कि बहुत सारा, यानी कर्टसी का दौर है, रिलीजियस फ्रीडम का भी नाम है, लेकिन ये उस दौर की कहानियाँ आप पढ़ें कि जिस वक्त ना कोई कानून था ना कोई बात थी, और मजहबी तासुब इस हद तक बढ़ा हुआ था कि खुले मुंह कहा करते थे कि अगर तुम इस्लाम में आए तो हम तुम्हें मार देंगे। तो अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से बचाए। शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ये आयत तदब्बुर भी है, इसको हाईलाइट करेंगे। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वह बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाएगा? हालांकि हम इन सब लोगों की आजमाइश कर चुके जो इनसे पहले गुजरे। अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना है कि सच्चे कौन हैं, किस बात में, कलमे में, और झूठे कौन हैं। इसके बरक्स हम हसीबल्लज़ीन यामलून सय्यात यसबिकून सा मा यहकुमून। और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं वो ये समझ बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे? तो वो बड़ा गलत हुक्म है जो लगा रहे हैं। तो सुन लीजिए, क्या जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता हो उसको मालूम होना चाहिए क्या कि अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त आने वाला है? खुद से पूछिए कि अल्लाह से मिलने की भी उम्मीद है, तवक्को है? और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। रह गई बात ज़िंदगी में इस्लाम लाने के बाद करना क्या है। वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदू लिनफ्सी। और जो कोई मेहनत करता है, यानी मुजाहदा करता है, मुश्किलात से गुजरता है, तो अपने ही भले के लिए करेगा। यानी आज अगर मैं कोई काम करूँगी अच्छा तो इसका फ़ायदा कल मुझे ही होगा, और अगर आज आप कोई अच्छा काम करें तो अल्लाह ताला आपसे ही करवाएगा ये काम, इसमें कोई शक की बात नहीं। रह के अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला तो यकीनन जहान वालों से बेनियाज है। यहाँ तक आप देखिए कि सूरत का शुरू ही ऐसे लगता है हलचल मचाने वाला। इस तरह जोश से बात हुई कि देखो क्या कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए हो, क्या तुम कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान कहकर जन्नत के दावेदार बन गए हो? ये नहीं हो सकता। वो एक शेर भी है ना कि छू मी गोयम दानम बलर्जम के दानम मुश्किलात ला इलाह। अलामा इकबाल कहते हैं कि मैं ख़ुद को मुसलमान कहते हुए डरता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कलमा पढ़ने के बाद या ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद क्या मुश्किलात आती हैं। तो याद रखिएगा कि दुनिया में हर जगह टेस्ट होता है। आप किसी को कहते हैं ना आई लव यू, तो वो भी आपका इम्तिहान लेगा कि क्या वाकई वो आप वाकई उससे मोहब्बत में सच्चे हैं। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं ना, तो हम भी अल्लाह ताला के साथ एक किस्म का वादा कर रहे होते हैं कि अल्लाह हम तुझसे प्यार करते हैं। तो अल्लाह ताला मुझसे आपसे फिर उसका टेस्ट लेता है कि बताओ क्या तुमने वाकई इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है कि जो अल्लाह कहेगा वो करोगे। बंद मुट्ठियों से जन्नत कभी नहीं खरीदी जा सकती। आप देखिए, किसी के पास कोई बीज हो और उसको मुट्ठी में बंद रखे, कभी भी उसमें से पौधा नहीं उगेगा, फसल कहाँ आएगी और फल कहाँ से आएगा। कब होता है उस बीज को थोड़ी देर के लिए आपको मिट्टी में दबाना पड़ता है, फिर पानी देते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाके फसल पाते हैं। इसी तरह मैं और आप नेकियों को छुपा कर रख लें कि दिल से हम बड़े नेक हैं, हमें बहुत पता है क्या करें, हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, हमारी मजबूरियाँ ऐसी हैं, तो फिर जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत के लिए मुश्किलात तो आएंगी। जिस तरह अल्लाह ताला का वादा ईमान वाले के साथ जन्नत का है ना, लिख लें ये भी, इस पारे का जम बना दीजिए, जिस तरह अल्लाह ताला का ईमान वालों से मदद का वादा है ना, इसी तरह ईमान के बाद मुश्किलात का भी वादा है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसी मुश्किलात में लोगों को बचा लेता है। बस आप देखिए कि बाज़ लोग जो होते हैं ना, लफ्ज़ मुश्किल से या इम्तिहान से डरते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए कोर्सेज में ज्वाइन नहीं करते, और लिसनर तो एस मोस्ट वेलकम, एनी टाइम कोई आ सकता है, गेस्ट भी बन के आ सकते हैं। लेकिन अब उन्हें कहा जाए कि आप रेगुलर स्टूडेंट बनिए, आप फॉर्म फिल करें, आपको हम ग्रुपिंग देंगे, तो बस लोग कहते नहीं टेस्ट होंगे, इम्तिहान होंगे, असाइनमेंट होंगे। लेकिन आप कभी सोचिए कि आप माशाल्लाह बचपन से अब तक कैसे बड़े हुए, मैट्रिक भी किया तो 10 साल क्या किया, हर साल आपसे आपकी उम्र के मुताबिक इम्तिहान लिया गया। कभी कभी ऐसा हुआ कि आपसे आप दूसरी क्लास के बच्चे से तीसरी क्लास का टेस्ट ले लिया जाए, ABC सिखाया है तो EFG का टेस्ट ले लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई उस्ताद ऐसा नहीं करता। दूसरी बात देखिए कि उम्र के साथ जूँ जूँ हमारा इल्म बढ़ता है ना, तो हमारे फिर सवाल मुश्किल होते हैं। बच्चों को 2+2 मिलता है, बड़े होते हैं तो अगली क्लास में 2×2 आ जाता है, उससे आ गया तो 22×2 आ गया, होते होते उम्र के साथ इम्तिहान बहुत बड़े होते हैं। आज आप अगर अपनी तीसरी क्लास की बुक देखें तो आपको आसान लगेगी कि मुश्किल लगेगी? बहुत ही आसान लगेगी। पर जब आप तीसरी क्लास में थे, आप रोते हुए स्कूल जाते थे, हाय अम्मी ये बड़ा मुश्किल है, मैंने नहीं करना है। इसी तरह याद रखिए, जितना ईमान बढ़ता जाता है ना, उतने टेस्ट बढ़ते जाते हैं। शुरू में जिस वक्त आप उस टेस्ट में होते हैं ना, आपके बिल्कुल इवन होता है। आज से ये मिसाल लिख ले अपने लिए, इसको बना के पैरेबल दूसरों को बता दीजिए कि आपका जितना ईमान है उतनी आजमाइश है। अल्लाह ताला कभी आपको, मुझको, आपकी मेरी वुस्सत से ज़्यादा ईमान मुश्किल में नहीं डालेगा, ये अल्लाह का वादा है। ये मेरे आपके कहने की बात नहीं है, बल्कि हकीकत की बात है कि अल्लाह ताला आपको मुझे उतना ही आजमाएगा। हाँ, फिर उसके बाद देखिए कि एक इम्तिहान के बाद ही तो अगला पर्चा आता, अगली क्लास में आप कब आए? पूरी किताबें पढ़ लीं कि आप आ गए? नहीं आए। आप कब आए? जब आपने इम्तिहान पास किया। तो मैं और आप ज़िंदगी में अगर अगले दर्जों पर जाना चाहते हैं, ईमान के, तकवा के, शुक्र के, सब्र के, तवक्कुल के, तो हमें खुद टेस्टों में कूदना है कि अल्लाह जी आप हमारा टेस्ट लीजिए ताकि मैं अगली क्लास में जाऊँ। हमें अपने ऊपर हैरत होनी चाहिए, कब से ईमान के एक ही दर्जे पे चल रही हूँ, कब से एक ही अमल चल रहा है, कब से मेरा हिजाब एक ही अंदाज़ का चल रहा है, कब से मेरी नमाज एक ही अंदाज़ की है। ख़ुद को चेक किया करें। अगर ज़िंदगी में टेस्ट आ रहे हैं, इम्तिहान आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह फ़िक्र नहीं करना, बल्कि खुश हों कि अब अल्लाह ताला मुझे अगली क्लास में लेकर जाएंगे। फिर इसी तरह आपसे पूछा कि अल्लाह के नबी सबसे मुश्किल आजमाइश किसकी हुई, तो आपने फरमाया अम्बिया की, फिर सालेहीन की, और फिर दर्जा बदरजा ईमान वालों की। ये चीज़ वाकई आपको मुझे यकीन दिला देती है कि हम कहाँ खड़े हैं। सूरत बकरा में भी हम ये चीज़ पढ़ चुके, और अब पार सूरत कुरान पाक का आप देखिए कि आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला है, इसमें तो ख़ास तौर पे इसकी फ़िक्र करें कि मन का नरजू लिखा, क्या मेरी आपकी दिन ब दिन ज़िंदगी मौत से करीब नहीं होती जा रही? तो इसी बहाने हमारा अल्लाह से मिलने का वक्त भी तो करीब आ रहा है ना। तो अपनी ज़िंदगी में संजीदगी लाने की ज़रूरत है। हमें हर वक्त इस बात की फ़िक्र कर देनी है कि अल्लाह तो मुझे अपनी तौफीक दे कि मैं नेकियों की तरफ आ जाऊं। फिर आप देखिए कि बाज़ दफ़ा इंसान को दीन पर जो इम्तिहान आते हैं ना, वो क्यों मुश्किल लगते हैं? क्योंकि इसमें लोग फिर हमसे दुखी होते हैं, लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो ये सोच लीजिए कि एक ही वक्त में अगर अल्लाह और बंदों दोनों को खुश करना हो, तो मैंने अल्लाह को खुश करना है। बाकी वक्तों में बंदों को खुश कीजिए, लेकिन उस वक्त अल्लाह को चूज़ कीजिए जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आ जाता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इम्तिहान हमें पुख्ता करने के लिए आते हैं। आज अगर आप अपनी ज़िंदगी के पीछे मुड़ के देखें, आप अगर पीछे मुड़ें, तो आपको कुछ चीज़ें जो अपने वक्त पे बहुत बुरी लगी होंगी, चीखें निकल गई, हाय ये इम्तिहान क्यों आया, हाय ये मौत क्यों हो गई, हाय ये सदमा क्यों आया, लेकिन आज आप उसको अपने लिए नेमत समझेंगे। आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस तकलीफ़ से, उस मुसीबत से ये सीख लिया, तो सीख लिया तो आपकी खैर हो गई। तो बिल्कुल इस तरह अपने दिल को खोल करके कि अल्लाह अगर कोई इम्तिहान आए तो बस मुझे साबित कदम रखना, मुझे मुश्किल में ना डालना। एक औरत थी तो बीमारी की वजह से उसका सतर खुल जाता था, अल्लाह के नबी के पास आई तो कहने लगी मेरे लिए दुआ करें कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। तो आपने कहा कि तू चाहती है कि इस बीमारी के बदले तुझे जन्नत मिले? कहा हाँ। तो कहा फिर तू सब्र कर ले। कहा अच्छा चले ठीक है, फिर मेरी बीमारी ऐसे ही रहे, बस ये दुआ कर दें कि मेरा सतर ना खुले, मैं जन्नत में जाना चाहती हूँ। तो हर छोटी बड़ी मुसीबत, मुश्किल, तकलीफ़ मुझे आपको अल्लाह ताला के काबिल करती है। फिर आखिरी बात जो हमने इन आयतों में पढ़ी कि जो मुजाहदा करेगा, जिहाद करेगा, तो वो अपने ही लिए करेगा। तो मुजाहिद कौन होता है? वो बंदा जो हर वक्त अल्लाह की इताअत में सरगर्म रहे। किससे लड़ना पड़ता है? नफ्स से पहले लड़ना पड़ता है, इसको इताअत पे माइल करना पड़ता है। फिर इसी तरह अपनी सुस्ती से लड़ना पड़ता है, नींद से लड़ना पड़ता है, दौलत से लड़ना पड़ता है, अपनी मनपसंद चीज़ों से लड़ना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा आप इस जिहाद में कामयाब होते हैं तो उसके बाद दीन को समझना, सीखना, फैलाना, उसके लिए निकलना, सुबह को निकलना, रात को निकलना, जिस सब अल्लाह के वादे हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह के रास्ते में एक सुबह को निकलना या एक रात को निकलना दुनिया व माफीहा से बेहतर है। यानी आपका आज इस पारे को सुनने के लिए घर से निकलना, मुजाहिदा किया ना, मेहनत की, गाड़ी लगी, पेट्रोल लगा, क्या कुछ सेट करके आए, तो हो सकता है ये आज एक दिन का आपका निकलना आपकी पाकी दुनिया और माफा फीहा की, जो आपकी दुनिया की बाकी चीज़ें, उससे भी आपको कोई बड़ी खैर दे दे। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुबहान तआला जन्नत को बुलाएगा, वो बड़ी जीनत और सजावट के साथ आएगी, नुमाइश और आराइश के साथ होएगी, बहुत सजी भी होगी, समरी भी होगी। फिर अल्लाह सुबहान तआला उससे पूछेंगे कि बता तो किसके लिए तैयार हुई है? तो वो कहेगी कि मेरे वो बंदे की, अल्लाह ताला कहेंगे मेरे वो बंदे किधर हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में किताल किया और उनसे किताल किया गया, उनको तकलीफ़ें हुई, दी गई, वो सताए गए, और जिन्होंने मेरे रास्ते में जिद्दोजहद की। तो वो सब लोग आएंगे जो कि वाकई अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करते हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा इन सबको, जाओ तुम सब जन्नत में दाखिल हो जाओ। कितना प्यारा वक्त होगा उस वक्त, ये छोटी छोटी तकलीफ़ें याद रहेंगी, बच्चों का रोना, घर वालों का नाराज़ होना, ये करना वो करना, ये सब भूल जाएगा। सिर्फ आज मुझे आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि कहीं हम अपनी इतनी प्यारी जन्नत को कहीं ज़ाया ना कर दें। फिर इसके बाद याद रखिएगा कि जब जन्नत की बात होती है ना, तो साथ ही साथ ईमान और फिर मुनाफ़त का तकाबुल भी होता है। अगली आयतों में देखिएगा, वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, और जो लोग ईमान लाएँ और नेक अमल करें, इनकी बुराइयाँ हम इनसे दूर कर देंगे और इन्हें इनके बेहतरीन अमल की जजा देंगे। इसको भी आज समझ ही जाइएगा। आप देखिए कि बुराइयाँ कैसे दूर होती हैं, चॉइस बदलने लगती है। पहले बुरे बुरे काम अच्छे लगते हैं, फिर बुरे लगते हैं, पहले उसमें मज़ा आता है, अब घिन आती है, अब कहते हैं मेरी कितनी गंदी चॉइस थी, मैं कितने बुरे काम करती थी, मुझे कितनी बुरी जगहों पर जाके मज़ा आता था, क्या बुरी चीज़ें सुनती थी, क्या बुरी चीज़ें देखती थी, क्या बोलती थी। एक तो ये मतलब है, दूसरा ये है कि वाकई अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। और ये जो बात है ना, बेहतरीन जजा देंगे, तो इसको भी समझ लीजिए। आप देखिए कि मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं, 5 दफ़ा पढ़ते हैं। क्या आपकी हर दिन की हर नमाज़ एक ही तरह की होती है, एक ही कैफियत होती है? मेरी तो नहीं होती। कभी कोई नमाज इतनी मज़े की कि दिल करता है कोई छुड़ा ही ना आपको, आप बैठे ही रहें अपने जाए नमाज पे, बैठे अल्लाह से बातें करते रहें, और कभी सिर्फ घड़ी देख कर नमाज़ पढ़ रहे हैं, कभी बच्चे शोर कर रहे हैं तो उनको देख रहे हैं, कभी कोई बड़े को काम है कहीं निकलना, फ़र्क है ना। ये जो है ना अहसनु मा कानू यअमलून, क़यामत के दिन एक अल्लाह ने आपको मुझे गिफ्ट देना है, अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसा कर दे, अल्लाह ताला हमारी सारी ज़िंदगी की नमाज़ें लेकर आएगा। फिर उसमें से कभी जो सबसे खूबसूरत नमाज़ पढ़ी थी, इमेजिन करें, जिस दिन वाकई लगा कि मिल के ही आए अल्लाह से, अल्लाह ताला बाकी सब नमाज़ों को अपग्रेड करके उसके बराबर करके कबूल कर लेगा। अहसनु मा कानू यअमलून, ये है नुक्ता नवाज़। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम कोई ऐसे अमल ज़रूर कर लें कि जो हम अल्लाह ताला को दिखा सकें। फिर इसके बाद माँ बाप के कुछ हकूक की बात आती है, वसईन अल इंसान अभी वालिदई ही हुसना, हमने इंसान की हिदायत, इंसान को हिदायत की है कि अपने वालदैन के साथ नेक सलूक करे, लेकिन अगर वो भी तुझ पर जोर डाले कि तू मेरे साथ किसी ऐसे को माबूद ठहराए जिसे तू मेरे शरीक की हैसियत से नहीं जानता, तो इनकी इताअत ना कर, मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा तुम क्या करते रहे हो। क्या पता चला कि माँ बाप की खिदमत तो करनी है, माँ बाप की रिस्पेक्ट तो करनी है, लेकिन उनको होली नहीं बनाना। ये उस दौर की कहानी है जब घर घर में जंग, बच्चे उठ उठ के इस्लाम पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नबी का साथ दे रहे हैं, अब उनके बड़े हो सकता है कुछ और ही ख़ानदानी रिवायात में पड़े हुए थे, दीन के नाम पे बिदात को पर तरवीज दी हुई थी, तो उनके बच्चे जब मुसलमान होते, यंगस्टर टीनेजर जब कुरान पढ़ते आते तो चेंज होते, तो फिर माँ बाप उनको फोर्स करते हैं, आराम से बैठो, ठीक हो जाओ, शिर्क करो, नबी का साथ छोड़ो। अब कुछ नेक बच्चों के दिल में ये गिल्ट था कि हम नेकियों का काम करते हैं लेकिन हमारे माँ बाप हमसे खुश नहीं, तो उस पर अल्लाह ताला ने माइंड सेट किया, डोंट वरी, उनकी इज्जत करो, खिदमत करो, बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन बात वो माननी है जो कि अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक होगी। और जो लोग ईमान लाए हों और जिन्होंने नेक अमल किए हों, लनुदखिलन्नहुम फिल सालेहीन, तो हम इनको ज़रूर सालेहीन में दाखिल करेंगे। दोबारा देखिए फिर एक इंसान का किरदार, ये निफाक वाला शख्स है, शुरू में ईमान की आजमाइशों की बात थी, तो अभी आजमाइशों के डर पे ईमान को छोड़ने वाले की बात। वमिनन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में कोई ऐसा है जो कहता है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, मगर जब वो अल्लाह के मामले में सताया गया तो इसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह से ले लिया। अब अगर तेरे रब की तरफ से फतह नुसरत आ गई तो यही शख्स कहेगा हम तुम्हारे साथ थे, यानी लोगों की बातें उसको अल्लाह का अजाब लगता है। ये थोड़ा दिला शख्स है कि जो अल्लाह की इबादत नहीं करना चाहता और लोग सिर्फ उसको थोड़ी सी कोई बात ही कर देना, एक जाते जाते किसी ने बुली कर दी, किसी ने निंजा कह दिया, किसी ने मुस्लिम का नाम लेके छेड़ दिया, तो वो कहता है पता नहीं ये अजाब हो गया, यानी आप कह लें कि ये पीपल प्लीजर शख्स होता है। वो कहता है मैं हिजाब तो पहनूंगी लेकिन कब, जब लोग मुझे कहेंगे आप कितनी प्यारी लगती हैं हिजाब पहन के, आप तो और भी खूबसूरत हो गई, आपके चेहरे पे तो नूर आ गया, ये कहेगी मैं हिजाब करूंगी। और अगर हिजाब पहना और कोई कहता है ये कैसी लग रही हो, बड़ी लग रही हो, अम्मा लग रही हो, बस फौरन उतार दिया, यानी ये इस शख्स की कहानी है। तो याद रखिए कि जब भी दीन के नाम पर कोई मुश्किल आती है ना, तो दो में से एक काम ज़रूर होता है, एक तो ये है कि इस्लाम ऐसे लोगों से पाक हो जाता है, और दूसरा ये कि ईमान वालों के दिल में जो थोड़ी थोड़ी खोट खपट इंसानी तकाज़ों के तहत होती है ना, वो निकल जाती है। जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, वो कभी प्रीशियस नहीं बन सकता। बस अगर आप देखें कि कार्बन है, कार्बन आप जानते हैं कोयला होता है, उसको बोझ में डालते हैं, डला रहता है, जब पहाड़ों के अंदर खूब दबता है तो वो डायमंड बन जाता है, फिर उसको जौहरी काट काट के खूबसूरत काट देता है, वो और कीमती से कीमती कितने कैरेट का डायमंड बन जाता है। आप में दीन के नाम पर जो मुश्किल आए उस पर यह सोचें कि मैं डायमंड बन रही हूँ। अगर मैं और आप प्रेशर नहीं समझें, बर्दाश्त करेंगे और पीयर प्रेशर में आ जाएंगे, पीयर बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ नहीं बनेंगे। अगर डायमंड बनना है तो उसके लिए कोशिश करना होगा। बहुत से सारे लोग जो होते हैं ना, इंस्पायर हो जाते हैं, कहते हैं बहुत इंस्पायर्ड हो रहे हैं आजकल दौरे कुरान सुन के, इंस्पायरेशन से बात नहीं बनेगी, बल्कि इसके बाद मेहनत और मशक्क़त और मुजाहिदा करना पड़ेगा, बातें सुननी पड़ेंगी। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे इल्म दोस्त बना, अल्लाह मेरी इम्प्लॉयमेंट पक्की कर दे, मुझे इस किताब के लिए कहीं ना कहीं खपा दे, इससे पहले कि मैं ज़ाया हो जाऊँ और बेकार ईंटों की तरह इधर उधर पड़ी रहूँ। ऐ अल्लाह ताला तू मुझे किसी न किसी रास्ते में लगा ले, और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ़ायदा होगा। ये शुरू के छोटे छोटे मुजाहिदे जो है ना, इसके बाद असल जंग और किताल तो कभी आता है कभी नहीं आता, हर एक के लिए तो ये नहीं होती। तो मुझे आपको अपनी ज़िंदगी में अपने आप को रब के सामने पेश करना है कि तू बचा बचा के न रख इसे कि तेरा आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। तो अल्लाह ताला मुझे आपको मुहसिन बना दे और हम अल्लाह के रास्तों में चलने लगें। लेकिन इसके बरक्स मुनाफिक का हाल क्या होता है, फरमाया अब अलैहिस्सल्लाहु बियालम बिमाफी सुदूरिल आलमीन, क्या ये नहीं जानते कि दुनिया वालों के दिलों का हाल अल्लाह को बखूबी मालूम है, और अल्लाह को तो ज़रूर ही ये देखना है कि ईमान लाने वाले कौन है और मुनाफिक कौन है। ऐ अल्लाह तो हमारे लिए तो ईमान का ही नाम लिख ले, हमारा निफाक दूर कर दे। हम तो अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें पूरे दिल से ईमान के लिए चुन ले, हमें निफाक वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं बसर करनी कि जिसको पाकर हम तुझे नाराज़ करके तेरे पास आएँ, बल्कि तू हमारे लिए आसानियों के मामले करते हुए हमारे ऊपर वो आजमाइशें ना डालना कि जो आजमाइशें हमारे ईमान को ले लें, इसके बाद जो भी आए हमें उस पर राज़ी कर दे। फिर इसके बाद एक और बात देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत आयत, और वाकई आजमाइशों के अंदर ये आयत जो आयतें बंदे को बहुत तसल्ली देती हैं। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू इत्तबिऊ सबीलना वला नहमिल ख़ताया, ये काफ़िर लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो और तुम्हारी ख़ताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे। ज़रा सोचिए आज भी कोई कहता है, बहुत सारे कहते हैं, मैंने अपने कानों से माओ को कहते सुना, अपनी बेटियों को करो करो पहनो, ये जानना पड़ेगा, मूवी सेशन होगा, करो करो, अगर अल्लाह पूछेगा मैं आगे आ जाऊँगी, यकीन करें। अल्लाह ताला कहते अच्छा, ये इतनी बहादुर माँ हैं कि अपने गुनाहों के साथ बेटी का भी उठाएंगी, हालांकि इनकी ख़ताओं में से कुछ भी वो उठा नहीं सकेंगे, और अलबत्ता ये तो झूठे लोग हैं, अलबत्ता ये कतन झूठ कहते हैं। तो ज़िंदगी में कभी किसी बंदे को खुश करने के लिए रब को नाराज़ ना करें, क्योंकि क़यामत का बोझ आपने मैंने खुद ही उठाना है। हाँ ज़रूर, ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे बहुत से बोझ भी। और क़यामत के रोज़ यकीनन इन इफ्तराबाजियों की बाज़पुरस होगी जो वो करते रहे। आज तो हो सकता है औलाद खामोश हो जाए, या बीवियाँ खामोश हो जाएँ, या बहुएँ खामोश हो जाएँ लोगों के ये लोगों की ऑफ़र सुन के, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कल मैं तो ज़रूर पूछूंगा कि सुनाओ भाई तुम क्या करके आए हो। यकीन करें, इस दुनिया के दजल से बच के जो इंसान दुनिया में आएगा वही बंदा अपने आप को अल्लाह ताला की काम का करेगा, वरना ये दुनिया तो हमें जन्नत में भी नहीं जाने देगी। यकीन कीजिए, हमारा दीन इतना बैलेंस दीन है कि कोई डिसेबिलिटी है ही नहीं है। अल्लाह को अल्लाह का हक दो, बंदों को बंदों का हक दो, खुद को भी हक दो, नफ्स का हक है, मेहमान का हक है, घर वालों का हक है, करते जाइए, मुतमईन रहेंगे। कहीं कोई आपसे हक से ज़्यादा मांगे तब के एक्सक्यूज़ मी क्या कहा आपने? हम बहुत सारी ऐसी इजाज़तें लोगों से मांग रहे होते हैं जिसकी कतन ज़रूरत नहीं होती। हम में से कोई वॉशरूम में जाने से पहले किसी से इजाज़त नहीं मांगता कि मैं घर में जा रही हूँ, क्या मैं वॉशरूम में जाऊँ। खाना खाते हुए कोई इजाज़त नहीं लेता शौहर से, खाने शौहर को पता ही आपकी बेसिक्स हैं। तो इसी तरह हिदायत भी मेरा आपका बुनियादी हक है। अब आगे कौमों के थोड़े से किस्से जिसमें यही पता चल रहा है कि आजमाइशों के बाद कौन लोग बचाए गए। वलकद अरसलना नूहन इला कौमी ही, हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, वो 50 कम 1,000 बरस इनके दरमियान रहे। आखिरकार इन लोगों को तूफान ने घेरा इस हाल में कि वो जालिम थे। फिर नूह को और उन कश्ती वालों को हमने बचा लिया और इसे दुनिया वालों के लिए एक निशान इबरत बना के रख दिया। इशारा अल्लाह के नबी की तरफ कि आप भी बच जाएंगे और आपके पैरोकार भी बचेंगे। और आप देखिए वो कश्ती अभी तक खुलेआम तो बाहर नहीं आई, लेकिन आएगी, हमारा ईमान है। जूदी पहाड़ कहते हैं डिस्कवर हो गया जहाँ तूफान नूह के बाद कश्ती टिकी थी कुरान की रोशनी में, और अब वो आज कश्ती ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी अब इंशाल्लाह। जैसे फिरौन की मम्मी मिली तो उस वक्त कुरान की आयतें सच हुई, अल्लाह ने क्यामत तक के लिए इसको निशानी बनाई कि देखो तौहीद और शिर्क का ये बड़ा फ़र्क है कि आज अगर तुम आजमाइशों में हो और तुम्हारी टूटी फूटी कश्तियाँ ईमान की, अल्लाह ताला तुम्हें कल बचा लेगा। जैसे कि आगे इब्राहिम का किस्सा है, व इब्राहिम इस क़ाल अली कौम ही बुदुल्लाह वत्तकू, और इब्राहिम को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पूछ रहे हो वो तो महज बुत हैं। बुत थे जी बिल्कुल, और तुम तो महज झूठ कर रहे हो। दर हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई रिस्क भी देने का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह से रिस्क मांगो, इसी की बंदगी करो और इसी का शुक्र अदा करो, और बात क्या है कि इसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। ये पलटाए जाने का एहसास बंदे को बहुत ज़्यादा चुकन्ना कर देता है, होशियार कर देता है। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले की बहुत सी कौमें झुटला चुकी और रसूल पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि अल्लाह किस तरह खल्क की इब्तदा करता है, सुम मयूई दुहू, फिर वो इसको दोहराएगा, इन नजाली का अल्लाह ही यसीर। आप देखते हैं कि अल्लाह ताला कैसे मखलूक की इब्तदा करता है। बाप और मैं तो इंसानी मखलूक की बात करते हैं ना, कल अल्लाह ने मुझे एक ऐसा मंजर दिखाया जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा, किस तरह अंडे में से बच्चा निकलता है। आप तो हम सब जानते हैं, बचपन से हमने ये बातें सुनी हुई है कि हैच होता है और अंडा होता है। तो वो एक मशीन थी बेसिकली कि जिसके अंदर वो अंडा तोड़ के तो उसको एक ख़ास टेम्परेचर में रखते हैं, फिर उसको उसमें से ऑब्जर्व करें, जैसे इंक्यूबेटर में बच्चे को देखते हैं कैसे वो अंडे के अंदर एक वाइट सी छोटी सी फुटकी होती है। आपने भी देखी होगी जब अंडा तोड़ते हैं, वो असल में मेल और मेल होता है, फिर वो दोनों मिल के असल में अंडा जो होता है ना ये जाइगोट होता है, तो वो फिर ना उसको एक ख़ास टेम्परेचर में रखते हैं, फिर वो अंदर जो शेप बदलती है और उसके बाद फिर आखिर में उसमें से एक बच्चा निकलता है चूज़े का। ये आयत मुझे पढ़ते ही वो याद आ गया, यूई दुख, अल्लाह की शान है किस तरह वो खल की तख्लीक करता है। और मैं और आप कभी इसके बारे में बहुत कम सोचते हैं, हमारी ज़िंदगी में इस तरह की तो कोई बातें ही नहीं आती। और जब मुझे आपको इस चीज़ का यकीन आ जाएगा ना कि मेरा रब सब कुछ कर सकता है, तो फिर हम वाकई उस वक़्त अपने आप को अल्लाह ताला के आगे पेश कर देंगे। कुल सीरु फिल अर्दि फंज़ुरु कैफ़ बदअल ख़ल्क़ सुम्मा अल्लाहु युन्शिउ नशअतल आखिरा, इनसे कहो ज़मीन में चल फिर कर तो देखो कि इस तरह खल्क की इब्तदा की है अल्लाह ने, फिर अल्लाह दूसरी बार भी ज़िंदगी बख्शेगा। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, जिसे चाहे सजा दे और जिस पर चाहे रहम कर दे। और फिर इसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो, तुम ना तो ज़मीन में आजिज़ करने वाले हो और ना आसमान में, और अल्लाह से बचाने वाला कोई सरपरस्त और मददगार तुम्हारे लिए है ही नहीं है। सच है कि नहीं? जिन लोगों ने अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया और साथ उसकी मुलाकात का, वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं, उनके लिए दर्दनाक सज़ा। आप एक चीज़ पे थोड़ी सी तवज्जो रखें ये बार बार इसमें अल्लाह ताला से मुलाकात का तस्करा आ रहा है, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि 20वें पारे के बाद जैसे वो ज़िंदगी का आखिरी दौर नहीं शुरू हो जाता कि जिसमें मौत भी याद आती है, बार बार बीमारियां भी आती हैं ताकि हमें मौत याद आए, इसी तरह इन पारों में अल्लाह ताला हमें वापसी याद दिला रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे हद तक 19, 29 और 30वें पारे का तो पूरा मेन थीम ही जो है वो हमारे सामने आ जाता है, क्या क़यामत, हशर, नशर। तो आज मैं और आप अपने लिए ये चीज़ नोट करें कि क्या वाकई हम अल्लाह ताला से मिलने को तैयार हैं, और अल्लाह ताला हमें मायूस ना करे, और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियों के मामले फरमा दे। फिर इसके बाद फरमाया, फिर इसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा कि कत्ल कर दो इसको और जला डालो इसको। आखिरकार अल्लाह ताला ने इसको बचा लिया। यकीनन इसमें निशानियाँ हैं, यकीनन इसमें बहुत सारी निशानियां हैं उस कौम के लिए जो ईमान लाने वाली है। और इसने कहा, तुमने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का ज़रिया बना दिया। यानी मोहब्बत की कुछ बेसिस होती है ना, ये कौन सी बेस है मोहब्बत की कि जिसमें फ़न, फ्रॉलिक, ना गाने बजाने और शेयरिंग और केयरिंग और क्या कुछ लोग उस वक़्त कर रहे होते हैं कि जिसके नाते से वो अपने आप को अल्लाह से दूर और दूसरी चीज़ों से करीब महसूस कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं, क्या तुम बुतों की मोहब्बत पे हो? आप और मैं भी ज़रा अपनी मोहब्बतों का जायज़ा लेकर देखें, किस वजह से मेरी दूसरों से मोहब्बत है। यानी इस वक्त मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हम किस नाम पे बैठे हैं, हमें किस चीज़ से मोहब्बत है? यह आपका मेरा काम है कि अपनी मोहब्बतों के किबले दुरुस्त करें इससे पहले कि हमें हसरत होने लगे। मगर क़यामत के रोज़ तुम एक दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे, और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। फ़ामन लहू लूत, इस वक्त लूत ने उसको माना, और इब्राहिम ने कहा मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ। इसको हाईलाइट कीजिएगा, इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, अपनी ज़िंदगी का स्लोगन बना लें। मैंने तो अपने कुछ पर्सनल कामों में यही लिखा होता है, इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी। हकीकत यह कि जब तक मैं और आप अल्लाह ताला के लिए कुछ चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, हमारी ज़िंदगी में कभी वो सच्ची खुशियाँ नहीं आएंगी जिसका हम तकाजा भी करते हैं और जिनको हम मानना चाहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती अगर आप देखना चाहते हैं तो मुहाजिरुन इला रब्बी, एक एक कांटा रास्ते का निकाल दीजिए, एक एक बुरी आदत निकाल दीजिए, एक एक बुरी कंपनी निकाल दीजिए, बुरी बुरी दोस्तियां निकाल दीजिए। क्या सोचकर कि मैंने लम्हा लम्हा, लहजा लहजा अपने रब के करीब जाना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हैं ना, तो फिर प्यार भी अल्लाह से तभी होता है। जैसे दुनिया में जिस चीज़ के लिए कुछ कुर्बानियाँ दी होंगी ना, तो उसकी हमें बहुत कदर होगी, हम उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा मामला रखते हैं। जिस बच्चे को माँ बहुत ज़्यादा देखे, वो बीमार रहे, दुखी हो, तो माँ को उस बच्चे से ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो जब अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देंगे तो ये भी अल्लाह की मोहब्बत को लेने वाली एक चीज़ है। इन्ना हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। और हमने उसे इसहाक़ और याकूब जैसी औलाद इनायत फरमाई, और उसकी नस्ल में नबूवत और किताब रख दी, और इसे दुनिया में इसका अजर अता किया, और आखरत में वो यकीनन सालेहीन में से होंगे। और हमने लूत को भेजा जबकि इसने अपनी कौम से कहा तुम तो वो फुखश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में किसी ने ना किया। क्या तुम्हारा हाल ये कि मर्दों के पास जाते हो और अहसनी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो? फिर कोई जवाब इसकी कौम के पास इसके सिवा न था कि उन्होंने कहा कि ले अल्लाह का अज़ाब अगर तू सच्चा है। लूत ने कहा मेरे रब इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। देखिए ये मुफसिद क्यों है, इस काम को फसाद क्यों कहा गया? क्योंकि इसे डिकम्पोजिशन हो जाती है सोसाइटी की। औरत मर्द को अल्लाह ताला ने माशरे के दो कंपोनेंट बनाकर पेश किया। जब मर्दों को मर्दों में अट्रैक्शन होगी तो औरतों में नहीं रहेगी, जब औरतों में नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, सोसाइटी कैसे पनप लेगी? और आप इस बात को थोड़ा सा आज से 10 साल आगे जाकर सोचिए, मैं अपने दिल से आपको बता रही हूँ ये सोचकर कि जिस तेज़ी से और शद्दोमद से, जिसको कहना चाहिए कि एक बड़ा अच्छा काम समझ के, इस काम की हिमायत वेस्ट कर रहा है, और जो चीज़ आज वेस्ट में बहुत आपको इन लग रही है ना, और हमारी सोसाइटी में अगर वो अभी ऑकवर्ड है, बैकवर्ड फील हो रही है, 5 से 5-6 साल बाद वहाँ भी शुरू हो जाएगी। अभी भी ढका छुपा बहुत है लेकिन खुल के आएगी। तो मैं सोचती हूँ 10 साल बाद जब सारे ही होमोसेक्सुअल हो जाएंगे 90% लोग, तो फिर बच्चे कहाँ होंगे, शादियाँ कहाँ होंगी? ये दिन ब दिन शादियों के मसले बढ़ते जाएंगे। और आज एक ये बिग रीज़न है, कई माएँ कहती बेटा कहते शादी नहीं करनी, मैंने कहा कोई चक्कर है ये कैसे, इतनी बड़ा शरीफ है? मैंने कहा या फिर दो तरह की बात है, या तो उसमें कोई नॉर्मलिटी है, मर्दानगी के ख़िलाफ़ है, मेडिकल प्रॉब्लम है, चेक कराइए, या फिर उसका कोई और प्रॉब्लम है। जवान मर्द सेहतमंद कमाता खाता सब कुछ है, शादी नहीं करनी ये खतरे की बात होती है। तो तो आप देखें कि आने वाले दौर में फिर बच्चे कहाँ से होंगे, नस्लें कैसे होंगी। हदीस में आता है कि क़यामत के करीब ये दुनिया इतनी वर्स्ट हो जाएगी, इतनी ख़राब होगी, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और जब कोई कब्रिस्तान के पास से गुजरेगा तो कहेगा, कब्र वालों तुम कितने खुशकिस्मत हो कि ज़मीन के पेट में हो, हम ज़मीन के ऊपर हैं। फितने फितने और जानवरों वाली ज़िंदगी होगी। तो आप देख रहे, दिन ब दिन ये जानवरपन सामने आ रहा है। हज़रत लूत ने आज से कितने सौ साल पहले इस बात का ख़तरा महसूस किया, हमें आज ही इसको महसूस करना है, क्योंकि हमारे सरों पर ये ख़तरा आप मंडला रहा है। अब ये नहीं कह सकते दूर है, हम वाकई इस ख़तरे की जद में हैं। बचपन से अपने बच्चों को लग सुलाइए, बेटे बेटी को लग सुलाएं, बेटी बेटी को लग सुनाएं। ख़ास तौर पर 7-8 साल के बाद जब प्यूबर्टी के असरात शुरू हो जाएं, एक लिहाफ में एक बिस्तर में दो बेटे भी ना सोएं, दो बेटियां भी ना सोएं, भाई बहन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बच्चों के कमरे में रातों को उठ के बहाने से कमरा ठीक करने, लाइट जलाने के बहाने 2-3 चक्कर लगाया करें। वल्लाह ही आज बहुत फितनों का दौर है। लाइट जलाएं, आप उनको चेक करें, और ये कोई तजस्सुस के नाम पे नहीं करें, उनकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी करें। लेकिन ये उम्र ऐसी होती है, नए नए कामों का शौक़ होता है, इंसान नए नए तजुर्बे करना चाहता है। तो अगर ये सारी बातें पता चल जाएं अगर वक्त पे, तो कम से कम इंसान अपने नफ्स पे काबू तो पाए। और अगर किसी को अपने अंदर ये जज्बे महसूस हों तो फिर अपनी नज़रों को पाक करें, मत देखें वो चीज़ें जिससे ये जज्बे उभरते हैं, मत हैवी फूड खाएं, मत ऐसी जगहों पर जाएं जहां ऐसी फिक्शन है, शादियों में मत जाएं, कुछ ना करें, अपने आप को हत्तुल वजा इबादत में रखें ताकि इस किस्म की चीज़ें ना हों। और साथ ही साथ शादियों में जल्दी कीजिए, आज तो वो वक्त आ गया है कि इधर बच्चा बालिग हो उधर आप शादी कर दें, वरना तो अल्लाह ही रहम कर दे, वरना तो पता नहीं क्या क्या फितने अंदर आ सकते हैं। फिर उसके बाद फरमाए, वलम्मा जात रसूलना इब्राहिम बिल बुशरा, और जब हमारे भेजे हुए इब्राहिम के पास बशारत लेकर पहुँचे तो उन्होंने उससे कहा, हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, इसके लोग सख्त ज़ालिम हो चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वहाँ तो लूत मौजूद है। देखिए इब्राहिम को कितना फ़िक्र है दूसरों का, हर वक्त ऐसे लगता है कि इब्राहिम दूसरों के गम में घुलते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको भी इसकी तौफीक दे। खैर क्या हुआ, उन्होंने काम खूब जानते हैं कि वहाँ कौन कौन है, हम उसे और उसकी बीवी के सिवा, हमें उसे और उसकी बीवी के सिवा इसके बाकी सब घर वालों को बचा लेंगे। और वो बीवी का क्या हाल होगा, वो तो पीछे रहने वालों में थी। वलम्मा अंजात रसूलना लूता, फिर जब हमारे भेजे हुए लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो इनकी आमद पर वो सख्त परेशान और दिल तंग हुआ। उन्होंने कहा, ना डरो और ना रंज करो, हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे सिवाय तुम्हारी बीवी के। तीसरी दफ़ा इन आयतों में जिक्र है बीवी का, साफ साफ बता दिया, आंखें खोल लो, नेक शोहर बीवी को फ़ायदा नहीं देगा अगर बीवी में नेकी ना होगी। और इसी के ऑपोजिट भी बात है, हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं इस फिस की बदौलत जो ये करते हैं, और हमने इस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी उन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं। कैसे अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि नबी की मौजूदगी भी लोगों को नहीं बचा सकी, और आज तो अंबिया कराम भी नहीं है। फिर कौम शुएब, माली मामलात का बिगाड़, वैला मदजना खाखम शुएबा, और मदीन वालों की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा, उसने कहा, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, रोज़े आखिर के उम्मीदवार रहो, और ज़मीन में मुफसिद बनकर ज़्यादतियाँ न करते फिरो। मगर उन्होंने इसे छुटला दिया, आखिरकार एक सख्त जलजले ने इन्हें आ लिया और वह अपने घर में पड़े के पड़े रह गए। और आद और समूद को हमने हलाक किया, तुम वो मुकामात देख चुके हो जहाँ वो रहते थे, इनके अमाल को शैतान ने इनके लिए खुशनुमा बना दिया। आज भी यही होता है, ऐसे विनीर चढ़ाता है शैतान कि चांदी सोना लगने लगे, लोहा सोना लगने लगता है। गुनाहों को ऐसे नेकियाँ बनाकर पेश करता है कि सारी कामयाबी ही गुनाहों में, और लोगों को लगता है नेक बने तो शायद पता नहीं हम नाकाम हो जाएंगे। और क्या किया, और इनको रोक दिया राह रास्त से, किस तरह से बरगश्ता किया, फसद्दहुम अन सबील, यानी नेक राह उनको अच्छी ना लगी। और याद रखिए, जब गुनाहों का चस्का लग जाता है ना तो नेकियां बोरिंग लगती हैं, बोर, मज़ा नहीं आ रहा, इंजॉय नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कब अकानु मुस्तबसरीन, हालांकि वो होश घोश रखते थे, समझदार थे, दुनियावी इंटेलेक्ट तो बड़ा स्ट्रांग था, IQ तो 20 से भी ऊपर था, लेकिन दीन के मामले में अक़ल बिल्कुल काम न की। वक़ारून व फ़िरऊन व हामान, और कारून व फ़िरऊन व हामान को हमने हलाक किया। मूसा उनके पास बयीनात लेकर आए मगर उन्होंने ज़मीन में अपनी बड़ाई का ज़ोम किया, हालांकि वो सबकत ले जाने वाले ना थे। आखिरकार हम हर एक को हमने उसके गुनाह में पकड़ लिया। फिर इनमें से किसी पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी, और किसी को एक ज़बरदस्त धमाके ने आ लिया, और किसी को हमने ज़मीन में धंसा दिया, और किसी को गर्क कर दिया। कौमे लूत की तरफ इशारे हैं आखिरी दो। अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला ना था मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। अब शिर्क की बड़ी खूबसूरत मिसाल है, और गालिबन यही वजह है कि इस सूरत का नाम अनकबूत है। आइए सुनते। मसलुल्लज़ीन अत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, मिसाल इन लोगों की जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए। इस मकड़ी जैसी है, जैसे वो अपना एक घर बनाती है, और सब घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग समझते, या काश ये लोग इल्म रखते। इन्नल्लाह यालमु मा तजदून मिन दूनिही मिन शैइन, ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज़ को भी पुकारते हैं अल्लाह इसे खूब जानता है, और वही ज़बरदस्त भी है और हकीम भी है। ये मिसालें हम लोगों के समझने के लिए देते हैं। वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, मगर इनको वही लोग समझते हैं जो इल्म रखते हैं। खलक अल्लाहु समावाती वल अर्द बिल हक, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को हक के साथ पैदा किया। दर हकीकत इसमें एक निशानी है अहले ईमान वालों के लिए। यहाँ देखिए मकड़ी की बात है, मकड़ी किस तरह से जाला बनाती है। असल में ये शिर्क और तौहीद का फ़र्क है। बज़ाहर आप देखिए कि दुनिया में भी आज एक नेट फैला हुआ है, नेट कहते हैं वेब को, वेब का नाम सुनते ही हैं, वेबसाइट्स क्या है, वेब कहते हैं मकड़ी के जाले को। देखने में बड़ा कमज़ोर लगता है लेकिन होता बहुत स्ट्रांग है, और एक फूंक मारी जाए तो उड़ जाता है। आज पूरी दुनिया में अगर जहालत, नाफरमानी और नाशुक्री और फिस्क और करप्शन की एक वबा आई हुई, एक प्लेग आई हुई है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वक्ती है, तुम इसको मजबूत ना समझो। देखने में खूबसूरत बहुत लगता है लेकिन असल में बोदा है, अंदर इसके जान नहीं होती। अब ये सब किसने बनाया? अल्लाह ताला ने मकड़ी को बनाया। ये थोड़ा सा देखते हैं इसकी तस्वीरों को, और आप लोग खुद महसूस करके देखेंगे कि कितनी खूबसूरत तरीकों से ये वेब बनाती है। आप ये देखिए कि ये इतना बारीक होता है कि इसका तार इतना स्ट्रांग है। मैं खुद भी एक सुबह वीडियो देख रही थी कि एक शख्स जंगल में घूम रहा है और दूसरे दोस्तों को नहीं दिखा, तो कहने लगा इधर आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ। इंग्लिश में थी वो वीडियो। तो अपने ग्लासेस उतार के ना उसने यूं फेंके, तो वो ग्लासेस उसके ऐसे लगे कि जैसे हवा में मुअल्लक हो गए और हिलने लग गए। तो उसके दोस्त कह रहे वाह हाय ये क्या हुआ ना, कि ये कोई मिरेकल है। तो उसने कहा इधर आओ, फिर उनको इस एक एंगल से दिखाया तो वहाँ मकड़ी का जाला था। इतना स्ट्रांग था कि उसके ऊपर वो उसने ग्लासेस भी डाल दिए तो वो नहीं टूटा। तो इसका तार कहते हैं कि बहुत मजबूत होता है, पूरी दुनिया के गिर्द घुमा सकते हैं, इतना बारीक होता है कि जिस तरह से मकड़ी का घर नहायत बूदा, कमजोर और नापायदार है, इसी तरह से गैर अल्लाह के सहारे भी नापायदार है। जिस तरह से मकड़ी का घर हाथ के अदना से इशारे से खत्म कर दिया जाता है या खराब हो जाता है, इसी तरह अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद, मुश्किल कुशा और हाजित रवा समझना भी बेकार है, क्योंकि वो किसी काम में नहीं आ सकते, चाहे जाहरी तौर पर खूबसूरती क्यों ना हो, हकीकतन कमजोर हो। देखिए खूबसूरत कितना लगता है लेकिन है ये कम इस नाते से कमजोर, चाहे जाहरी तौर पर बकसरत ही क्यों ना हो, हकीकतन कमजोर है। ये पूरे पूरे जो दरख्त है ना, ये जालों से भरे हुए हैं। अगर आप इसको क्लोज से देखें तो ये पूरा जाल है इसके ऊपर। अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, और वही है जो हमारी हाजतों को पूरा करता है, क्योंकि वहुअल अजीजुल हकीम, अल्लाह की शान है जो ये करती है। और अगर आप देखें कि ये बनाता कैसे है, तो ये अमेजिंगली ये किनारों से शुरू करता है। आप देखें एक जगह से खड़ा हुआ दूसरी जगह पे जाता है, ये देखिए एक जगह से इधर गया फिर उधर गया फिर इधर से दूसरी तरफ जाएगा। ये देखिएगा अब ये इसके तीन कोने बनेंगे। बिल्कुल आप में से किसी को अगर कुरेशिया बुना होना तो वो याद आएगा, ये देख लें पहले कोने बुनता है, सारे कोने बनाएगा, फिर इसके बीच में जाके उछलेगा तो ये घर बन जाएगा। किसने सिखाया इसको, ये सोचिए, सो ये कौन सिखा रहा है, ये मालिक है। तो इंसान के पास तो बहुत सारी अकल है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इस अकल को अकल सलीम बनाए। जी आइए ज़रा देखते हैं, जो इस सूरत में हमने वो अंडे की फॉर्मेशन देखी थी, तो अल्लाह करे इधर आपको सही क्लियर दिख रहा हो तो देखेंगे। बस हर चीज़ में अल्लाह याद आएगा। आप इसके बाद जब भी कभी अंडा तोड़ेंगे तो आपको रब याद आना चाहिए, किस तरह से वो दिखाता है और करता है। ये इन्होंने एक जार में अंडा डाला है और उसके अंदर अब उसको किसी इंक्यूबेटर में रखेंगे। ये एक डॉट है जिससे बच्चा बनेगा। आप गौर से देखिए इसमें बच्चे की छवि बननी शुरू हो गई है। ये देखिए उसका दिल धड़क रहा है। और ये इतनी बारीक रगे हैं, ये जो रगे थी ना स्क्रीन में कैसे लगते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट है। थोड़ी सी आवाज़ कम कर दें उसकी। ये देखिए बिल्कुल चूजे का स्ट्रक्चर है, और ये बाहर उसकी पूरी ये रिब, ये वो जैसे छिल उसकी खाल होती है ना बाहर, ये वो है, और अंदर उसका दिल धड़क रहा है। बेजान अंडा था, युखरिजुल हय्या मिनल मय्य। अब ये उसकी अगली फॉर्म है, देखिए पहले अंडा था अब ये बना है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से वो, देखिए उसके पाँव बनने शुरू हो गए, वो अंदर उसकी नोके देखिए हिलजुल शुरू हो गई है ना, वो सबको पैदा करने वाला। माँ के पेट में भी तो यही कुछ होता है। अब ये देखिए बिल्कुल वो उसकी गर्दन, ये नीचे पाँव है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक गोश्त का छोटा सा बोटा है। ये देख लीजिए, ये बन गया, ये खूबसूरत सा चूज़ा बन गया। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र अल्लाह बना दे। हर चीज़ में इबरत है, हर चीज़ में गौर है। एक्टिविटी दे दूँ, आज अंडे से कोई चीज़ बनाएं, घर में है अंडे, जिसके पास है आज अंडा तोड़ें और उसको दे करके इस बेजान अंडे को कुछ चलाना शुरू कर दे, चलता आप बताएं कि अंडा खड़ा अपनी जगह से घूमना शुरू हो जाए और वो भाग रहा है उधर जा रहा है, आप किसको क्या हुआ? कभी हम वो काउंटर पर रखें तो नीचे गिर जाए तो कितना कम पड़ जाता है। ये भी तो चूज़ा भी तो भागता हुआ अंडा ही है ना, तो ये अल्लाह की शान है, इतना प्यार है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं वमा या अकिलुहा इल्लल आलिमून, इल्म वाले इसको जानते हैं। अब यहाँ से पारा 21वां शुरू होता है, 21वां पारा। अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे आपके लिए आसानियों का मामला कर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।